आज है 4 अगस्त दिन मंगलवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। 18 साल के युद्ध विराम के बाद केंद्र सरकार और NSE NIM के बीच हुआ समझौता।
पिछले 18 साल से एक युद्ध विराम था भारत सरकार और NSE NIM के बीच में। उसकी ये एक जो है एक अंत यहाँ पे अकॉर्ड में हुआ है। नागा अकॉर्ड करना ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ।
स्पीकर ने किया कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबित। क्या होगी कांग्रेस की रणनीति?
30 लोगों को अलग करके हम सदन में नहीं ला सकते। सारे अपोजिशन पार्टी के लोग उन्होंने इकट्ठा होकर ये तय कर दिया है कि सारे विपक्ष के लोग मिलके हम हाउस बायकॉट करेंगे।
चरमपंथ के बाद पंजाब झेल रहा है नशीली दवाओं का दंश। सुनेंगे विशेष रिपोर्ट, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। भारत सरकार ने नगा अलगाववादी संगठन NSE NIM के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। हालांकि समझौते का ब्यौरा अभी जारी नहीं किया गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन कई गुटों में बटा है। सोमवार को केंद्र सरकार ने इस आंदोलन के इसाक मुइवा गुट के साथ समझौता किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी के 25 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में 8 विपक्षी पार्टियां लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सोमवार को सदन में हंगामे के बीच कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबित कर दिया था। महाजन ने कांग्रेस के इन सभी सांसदों का नाम लेते हुए कहा कि अगर उनका यह रवैया जारी रहा तो भविष्य में उन पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जलवायु परिवर्तन पर एक नई योजना की घोषणा की है, जिसे उन्होंने इस बारे में अब तक की सबसे बड़ी योजना और महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस संशोधित स्वच्छ ऊर्जा योजना का मकसद अमरीकी पावर स्टेशनों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 15 साल के भीतर एक तिहाई तक कम करना है। इसके तहत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे साधनों पर खास ध्यान दिया गया है। इसके अलावा ऊर्जा के दूसरे नवीनीकरण स्रोतों को भी इस्तेमाल में लाने की बात की गई है। हालांकि बिजली उद्योग से जुड़े इस योजना के विरोधियों ने इसके खिलाफ लड़ने का मन बनाया है। कोसोवो की संसद ने संविधान में संशोधन करके एक विशेष अदालत बनाने की मंजूरी दे दी है, जो कि 1990 के दौरान हुए युद्ध अपराध से जुड़े मामलों की जांच करेगी। विपक्ष ने इस मतदान का बहिष्कार किया। विपक्षी पार्टी के नेता रामुश हरदिनाज ने इसकी वजह बताई। मेरा मानना है कि यह मतदान राजनीतिक वर्ग की एक गलती है, एक ऐसी गलती जो कि कोसोवो के लिए चीजों को और कठिन बना देगी, न सिर्फ आंतरिक स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी। ये थे विपक्षी पार्टी के नेता रामुश हरदिनाज के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी कतर में खाड़ी देशों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में वो इन देशों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि ईरान के साथ परमाणु समझौता इस इलाके को सुरक्षित रखेगा। खाड़ी देशों की चिंताओं और सीरिया, इराक और यमन में जारी हिंसा के बावजूद ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते का कतर ने स्वागत किया है। कतर के विदेश मंत्री का कहना था कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए था। ब्राजील में पुलिस का कहना है कि उसने अपने विभाग के पूर्व प्रमुख जोसे डिरसू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो BBCHindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। और जैसा कि आपने मुख्य समाचारों में समीर आत्मज मिश्र से सुना, केंद्र सरकार और नागा अलगाववादी संगठन NSE NIM के बीच हुए शांति समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड की शांति के लिए अहम बताया है। इस समझौते पर दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान 7RCR में हस्ताक्षर हुए। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
अपने आवास में इस समझौते के लिए हुई बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए इस समझौते के संकेत दिए। उन्होंने लिखा,
आज 6:30 बजे रेसकोर्स रोड पर हम एक ऐसी घटना के गवाह बनेंगे जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मील का पत्थर भी साबित होगी।
फिर देर शाम प्रधानमंत्री आवास में पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड के चरमपंथी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCNIN के नेताओं के साथ हुई एक बैठक में दोनों पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और NSCNIN के नेता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को नागालैंड की शांति के लिहाज से अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे पिछले 6 दशकों से अनसुलझी नागालैंड की समस्या हल हो पाएगी।
देश आजाद हुआ तब से इंसर्जेंसी के कारण कभी तनाव का, कभी लड़ाई का, कभी मारकाट का माहौल बना रहा। आशंकाएं इतनी गहरी थी कि कोई किसी पे भरोसा नहीं करता था। 60 साल से भी अधिक समय बीत गया। आज वो एक सुनहरा पल आया है जब हम शस्त्र को छोड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके नागालैंड का भी विकास हो और हिंदुस्तान का भी विकास हो, उस एक सपने को लेकर के नई यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं।
दूसरी तरफ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद नगा नेता थुइंगालेन मुइवा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए नगा और भारत के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होने की बात कही।
Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग एक दूसरे को समझने की दिशा में काफी करीब आए हैं। हम दोनों पक्षों ने आपस में एक नए रिश्ते की शुरुआत की है। हम नगाओं और भारत के बीच मजबूत रिश्ते बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की विशिष्ट बुद्धिमत्ता और उनके दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। ये थे नगा नेता थुइंगालेन मुइवा के शब्द। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नागालैंड के सबसे बड़े चरमपंथी संगठन NSCNIN के नेताओं का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी दूरदृष्टि की भी प्रशंसा की है। पूर्वोत्तर में शांति के लिहाज से इस समझौते को अहम माना जा रहा है।
ये थे रोहित जोशी। तो भारत और NSCNIN के बीच 18 साल के युद्ध विराम के बाद ये शांति समझौता हुआ है। वहीं समझौते को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी अशोक कुमार ने पूर्वोत्तर मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नितिन गोखले से बात की और पूछा कि ये समझौता कितना अहम है।
इस समझौते में क्या क्या है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका पूरा टेक्स्ट या इसका जो कंटेंट है अभी तक पब्लिक में आया नहीं है। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 18 साल से एक सीज फायर चली आ रही थी, एक युद्ध विराम था भारत सरकार और NSCNIN के बीच में। उसकी ये एक जो है एक अंत यहाँ पे अकॉर्ड में हुआ है और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि एक ये बहुत वेलकम स्टेप मैं इसको कहूंगा, क्योंकि वहाँ पे NSCNIN ही सबसे बड़ा ग्रुप है उस इलाके में
जी।
और नागा अकॉर्ड करना ये बहुत बड़ी बात मैं समझता
हूँ। कौन से ऐसे बिंदु थे जिनको लेकर ये बात हुई और जिन पर सहमति बनने की उम्मीद है, ऐसे दोनों पक्षों के बीच ऐसे कौन से बिंदु थे?
देखिए सबसे बड़ी बात तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ने एक माना है कि जो नागा यूनिकनेस जिसको कहते हैं, नागा लोगों का जो एक अलगपन है, जो उनकी हिस्ट्री कही है, उनकी ट्रेडिशन, उनकी कल्चर, उसको माना गया है। और ये कहा गया है कि नागा हिस्ट्री जो है ये भारत स्वतंत्र होने से पहले वो मांग कर रहे थे कि हम भारत से अलग रहे या ब्रिटिश राज्य से भी हम अलग हैं, ये कहते आए हैं। तो इसको मेरे ख्याल से माना गया है, विदाउट सिसेशन जिसको कहते हैं, अलगाववाद को यहाँ बीच में न लाकर उनको एक ये कहा गया है कि नागा जो एक हिस्ट्री है उसको माना गया है, उसका जो यूनिकनेस है उसको माना गया है। और ये कहा गया है कि आपको और ज्यादा सुविधा दी जाएगी, ऑटोनोमी दी जाएगी और थोड़ा सा आपका जो कल्चर है उसको मान लिया जाएगा।
ये जो समझौता हुआ है वो इसाक मुइवा IM गुट के साथ हुआ है NSCN के, लेकिन इसका गुट एक गुट और भी है, खापलांग गुट, जो संभवतः बातचीत से खुद को अपने आप को अलग रखता है। क्या आप मानते हैं कि समझौते से समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी?
जी एक हद तक तो जरूर मिलेगी। देखिए अगर नागा समस्या का इतिहास देखें तो 1975 में 40 साल पहले एक समझौता हुआ था, शिलोंग अकॉर्ड जिसको कहा जाता है। तब NNC ने जब ये अकॉर्ड किया था तब यही मुइवा और आइजैक को न मानते हुए उन्होंने अपना फैक्शन शुरू किया था और 1980 में उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड को नागालैंड की शुरुआत की थी, जो जिसको हम NSCN के नाम से जानते हैं। इसके दो गुट हुए 1980 1988 में जो आईएम और खापलांग ग्रुप में हुए, तो ये हमेशा होता रहा है पूर्वोत्तर के इतिहास में फ्रीडम 1947 के बाद, कि जो एक ग्रुप के साथ आप एकॉर्ड करिए तो दूसरा ग्रुप उसको मानता नहीं है। पर इस मामले में ये कहूंगा कि खापलांग ग्रुप ऑलरेडी भारत सरकार के साथ जो एक सीज फायर था उससे अपना मुंह मुख चुका था वहां से, और फिर उन्होंने कहा था कि हम भारत सरकार के साथ सीज फायर नहीं रखेंगे। इसलिए आपने देखा पिछले कुछ महीनों से मारकाट चल रही थी वहां पे, इसलिए मैं समझता हूँ इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और शांति नागालैंड और उसके आसपास के इलाकों में बरकरार रहेगी, ऐसा मेरा मानना है।
इस तरह के समझौतों को लागू करने में किस तरह की दिक्कतें आप देखते हैं कि हो सकती हैं?
आसपास के जो राज्य हैं जैसे मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये आपको याद होगा एनएससीएन आईएम काफी दिनों से कम 15 साल से ये कहते आ रहा है कि हमारा एक हक है कि ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। मैं समझता हूँ इस अकॉर्ड के तहत, जिसकी अभी तक पूरी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन हमें पता नहीं है, मैं फिर भी मेरा एक एजुकेटेड गेस जिसको कहते हैं ये है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है स्टेट्स की, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बॉर्डर चेंज नहीं होंगे और सिर्फ थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और नागा ट्रेडिशनल राइट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए ज्यादा दिक्कतें आनी नहीं चाहिए इम्प्लीमेंटेशन करने में।
पूर्वोत्तर मामलों के जानकार नितिन गोखले से बात कर रहे थे अशोक कुमार। कल स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संसद में हंगामे के बीच कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबित कर दिया। स्पीकर ने यह फैसला नियम 374A के तहत लिया। इस नियम के तहत सदन के वेल में आने या फिर सदन के नियमों की अवहेलना करने, नारे लगाकर काम में बाधा पहुंचाने को लेकर स्पीकर सदस्य को 5 बैठकों के लिए निलंबित कर सकते हैं। 15वीं लोकसभा में भी स्पीकर ने सदन के सदस्यों को निलंबित किया था। कांग्रेस सांसदों के निलंबन के बाद हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की।
ये मोस्ट अनडेमोक्रेटिक है और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे काला धब्बा है। ये जो उन्होंने सरकार के प्रेशर में आके निर्णय लिया है ये ठीक नहीं है और इससे डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन वीक बन जाती है, स्ट्रांग नहीं। और अपोजिशन को वीक करना तो डेमोक्रेसी को वीक करना। अगर आप अपोजिशन के व्यूज को सुनना ही नहीं चाहते, उसका प्रोटेस्ट भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये बड़ा मुश्किल है। पार्लियामेंट में पहली बार फ्लैग बताना या डेमोन्स्ट्रेट करना या कोई स्लोगन शाउटिंग करना ये नया नहीं है, ये सालों से चलते हुए आया है। बीजेपी जब वो अपोजिशन में थे तो 10 साल यही काम किए, और कांग्रेस और दूसरे पार्टी अपोजिशन के लोग ये जब कर रहे हैं तो ऐसा अपना जो ब्रूट मेजोरिटी है उसको इस्तेमाल करके सस्पेंड करके वो अपोजिशन को डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था, बार बार चेतावनी दी गई थी कि आप अंदर प्ले कार्ड न लाएं, प्रदर्शन न करें, और सरकार का कहना है कि वो बहस के लिए, चर्चा के लिए हर मुद्दे पर तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस नहीं करना चाहता।
हम तो बोले ना, हर मुद्दे पे चर्चा जब होगी, जब आप रिजिग्नेशन दिलाएंगे तब होगी। जैसा कि पहले कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर्स रिजिग्नेशन दिए, उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं थे, चाहे अश्विनी कुमार लॉ मिनिस्टर के ऊपर नहीं था, या बंसाल जी के ऊपर नहीं था, या अशोक चौहान के ऊपर नहीं था, या शिवराज पाटिल जो होम मिनिस्टर थे उनके ऊपर कोई नहीं था। ऐसे कितने उदाहरण हम बता सकते हैं ना। लेकिन आप इस वक्त बोल रहे हैं कि चार्जशीट नहीं है या FIR नहीं डाले, कैसा दे सकते हैं? तो उस वक्त कैसा आपने पूछा?
खड़गे जी, अब कांग्रेस के 44 सांसदों में से 25 निलंबित हैं, मंगलवार से कांग्रेस की संसद के लिए क्या रणनीति होगी?
अब तो हम पूरे लोग ये तय कर दिए हैं, 25 लोगों को अलग करके हम सदन में नहीं जा सकते, और वो हमको डिवाइड एंड रूल करने के लिए है, चुन चुन कर वो सिर्फ कांग्रेस वालों को अलग कर दिए है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को, उन्होंने इकट्ठा होकर ये तय कर दिया है कि सारे विपक्ष के लोग मिलके हम हाउस बायकॉट करेंगे।
कौन कौन सी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां आपके साथ हैं?
सभी पार्टियां हैं। जब उन्होंने बंडोपाध्याय जी ने बोला है, CPI CPM ने बोला है, आरजेडी के साथ हमने बात किया है और एनसीपी वाले हमारे साथ थे, उन्होंने भी बोले, सभी लोगों से बातचीत हो गई, सभी लोग मान गए और इकट्ठा होके काम कर रहे हैं।
ये थे लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। संसद में चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद और केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। महेश शर्मा ने सलाह दी थी कि संसद में नो वर्क नो पे की पॉलिसी लागू होनी चाहिए। विरोधी दलों के सांसदों ने इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने डॉक्टर महेश शर्मा से बात की और पूछा कि पूरे विवाद को लेकर उनका क्या कहना है।
देखिए, मैं इसे विवाद नहीं कहूंगा, मैं कहूंगी चर्चा शुरू हो गई है। देश के 127 करोड़ लोग बड़े अरमानों के साथ अपने सांसदों को पार्लियामेंट में भेजते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे राष्ट्रहित के मुद्दों पर, हमारी विषयों पर ये चिंता करेंगे, वहां बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि 8 दिन से संसद नहीं चलने दी जा रही है और लगातार संसद ना चलने का एक कारण होता है कि विपक्ष चाहता है किसी विषय पर बहस हो और पक्ष कहे कि बहस नहीं होंगे, जनरली सामान्यतः कारण ये होता है। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं पहली बार का सांसद हूँ, पहली बार का मंत्री हूँ, और मुझे तकलीफ है वहां ये देखकर कि जब विपक्ष के जिस मांग के लिए सब पक्ष तैयार है, सरकार तैयार है किसी भी समय चर्चा के लिए, किसी भी समय सरकार कहती है प्रश्नकाल में भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं, कोई और समय है उसके लिए भी समय लेकर चर्चा के लिए देने के लिए तैयार है, तो आखिरकार विपक्ष का ये जो अड़ियल रवैया है, एक अराजकता का जो माहौल है, वो कष्टदायक है और वो भी लंबे समय तक रोजाना एक ही तरीके से प्ले कार्ड्स लेकर। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भावना इसके पीछे ये कहने की नहीं थी उसके 2-4-5 हजार रुपए तनख्वाह के कटे या वेतन के कटे, मेरे पीछे उसकी भावना को उजागर करना था। मेरा मकसद ये था कि कम से कम हम इस बात को तायीद करें कि देश की जनता उन्हें देख रही है।
आपकी इस बात का आपकी पार्टी के अंदर कितना समर्थन आपको मिल रहा है?
देखिए, मुझे आज एक पत्र के माध्यम से ही पता चला कि 150 सांसदों का उन्होंने सर्वे किया और उसमें से 111 सांसदों ने इस मांग का समर्थन किया है। अगर विपक्ष के वो लोग जो वेल में जाकर हल्ला गुल्ला मचाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ मेरी चिंता का कारण नहीं।
ये थे बीजेपी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। टीवी कलाकार गजेंद्र चौहान को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII का अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर करीब 50 दिन से हड़ताल कर रहे छात्रों ने कल दिल्ली में प्रदर्शन किया। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर पुणे से आए। उधर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकाला जा सकता है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
अभिनेता गजेंद्र चौहान समेत 5 लोगों की नियुक्ति के खिलाफ 53 दिन से हड़ताल कर रहे FTII पुणे के छात्र अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली में जुटे। दिल्ली में आंदोलनकारी छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया।
मैं भी जंतर मंतर पर हूँ FTII में। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में यहाँ पर FTII पुणे के छात्र और उनके साथ दिल्ली के कई नाट्य ग्रुप के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारी छात्र हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं और वो क्या चाहते हैं।
मेरा नाम रीमा है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ FTII में। हमारी पहले दिन से यही मांग रही है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके तहत गजेंद्र चौहान जी, अनिका घाईसा, नरेंद्र पाठक, राहुल सोलापुरकर और शैलेश गुप्ता जैसे लोग इस कमेटी में सिलेक्ट किए गए हैं, उस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसका कभी भी हमें कोई जवाब नहीं मिला।
यहाँ स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स नहीं तय करेंगे, आप स्टूडेंट्स के मत्थे इस तरह की बेवकूफियां थोप रहे हैं जिससे उनका पूरा भविष्य रसातल में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स नहीं तय करेंगे क्या? स्टूडेंट्स तय नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं।
प्रदर्शनकारी छात्र संसद की ओर मार्च करना चाह रहे हैं लेकिन जंतर मंतर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। बीच बीच में जब छात्र आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उनकी पुलिस के साथ झड़पें भी हो रही हैं। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।
बाद में छात्रों की एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिशंकर नचिमुत्तू की अगुवाई में 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सूचना प्रसारण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिला और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। उधर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि यह आंदोलन कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस मामले का हल बातचीत से ही निकाला जा सकता है।
एक इंस्टीट्यूशन दिल्ली में आके हड़ताल करे और उसके अंदर कांग्रेस वाले शामिल हो, ये भी कोई समझदारी बात नहीं है। अगर इस मसले को सुलझाना है तो इसको स्टूडेंट और सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन साथ में बैठकर ही सुलझा सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। जो मुद्दा बना लिया है स्टूडेंट्स ने, एक चेयरमैन को लेकर ये गलत है।
सरकार बातचीत से मामले को हल करने की बात कर रही है तो छात्र भी सूचना प्रसारण मंत्री से मिलकर समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन ये देखना अहम होगा कि ये बात कब होती है और गतिरोध कब खत्म होता है। वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
पंजाब का लगभग 600 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है। 90 के दशक में जब चरमपंथ उफान पर था तब इस सरहद के साथ कटीले तार की बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ। करंट के प्रभाव वाले तारों के बाद भी इस सरहद को नशीली पदार्थ की तस्करी का सबसे बड़ा रास्ता बताया जाता है। हरित क्रांति के अगुवा इस राज्य के पिछले 4 सालों के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के बाद पंजाब दूसरा ऐसा राज्य है जहां नशीले पदार्थों की सबसे ज्यादा बरामदगी होती है। पंजाब से सलमान रावी की ये रिपोर्ट।
जाने माने लोग गायक हरजीत हरमन पंजाब के एक गांव में आम लोगों के बीच गीत गाकर नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये मुहिम ऐसे समय पर चलाई जा रही है जब पूरा पंजाब नशे की चपेट में है और ये कृषि प्रधान राज्य अब नशीले पदार्थों के तस्करों का मुख्य केंद्र बन चुका है। पिछले 4 सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो सिर्फ पंजाब में लगभग 18,000 टन के आसपास नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई है, जबकि इसी दौरान इस धंधे में शामिल कम से कम 20,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पंजाब के कई जिलों, खासतौर पर सरहद से लगे इलाकों में नशीले पदार्थों के सेवन का दंश लगभग हर दूसरा घर झेल रहा है। यहीं की रहने वाली परमजीत कौर भी हैं जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है।
नशा करता सी, फिर मैं इत्थे भी दाखिल करी रखे 2 बारी, फिर 3 बार कहना मैनू एक मौका होर दे दो।
परमजीत कौर कह रही थी कि बहुत कम उम्र में ही उनके बेटे को नशे की लत लग गई और महज 22 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान की सरहद से लगे हुए तरन तारण जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक मनमोहन शर्मा कहते हैं कि अगर आम लोगों ने इसे रोकने के लिए पुलिस का साथ नहीं दिया तो इस धंधे पर कभी अंकुश नहीं लगाया जा सकता।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सोसाइटी को मिलके पुलिस का साथ देना चाहिए, उनके साथ मिलके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं कंट्रोल होगा। BSF के जवान को विन ओवर करके ये काम होता है, अदरवाइज वैसे नहीं आ सकता बॉर्डर प्रॉपर, लेकिन जहाँ विन ओवर हो गया वहाँ पे वो काम कर जाते हैं। हमारे जैसे इधर खेमकन साइड है, सरायमंद खान है, वो बॉर्डर के साथ है, वहाँ से होते, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सख्ती की हुई है। इसमें जैसे पहले बात चल रही थी पंजाब पुलिस वालों के इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं है अभी। जैसे यहाँ पे स्मगलर्स बहुत हैं, पुराने चल रहे हैं, सन 47 से चल रहे हैं, उनकी पूछते हैं स्मगलिंग, फादर बेटा भी कर रहा है, आगे उनके बच्चे होंगे वो भी स्मगलिंग कर रहे हैं।
अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक MF फारूकी का कहना है कि ये धारणा बिल्कुल गलत है कि सुरक्षा बलों की चूक की वजह से ही सरहद पार से नशीले पदार्थों की तस्करी होती है।
बड़ा ऑब्वियस सवाल है, जो लोग बॉर्डर्स पर नहीं रहते या उससे दूर रहते हैं उनके लिए ये बड़ी क्यूरियोसिटी जगाता है और उनको कई बार ये लगता है कि शायद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसके ऊपर उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इंडो पाक बॉर्डर हैं, ख़ास तौर से पंजाब के इस एरिए में, ये बड़े अननेचुरल बॉर्डर हैं, बिकॉज इनके दरमियान कोई ऐसी लाइन नहीं है जो किसी ज्योग्राफिकल फिनोमेना के साथ इनको डेमार्केट करती हो। एक सिंपल लाइन है, उस लाइन के अब अगर अगली तरफ पे कदम उठाते हैं तो आप पाकिस्तान में होंगे।
BSF के DIG कहते हैं कि सरहद के बिल्कुल पास गांव भी बसे हैं और वहां पर लगे कटीले तारों के उस पार भी खेती होती है। कई बार यहां रहने वाले किसानों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
ये बात भी समझने की है कि फेंस के आगे भी खेती होती है, दोनों तरफ खेतियां होती हैं और फेंस के आगे इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर और फेंस के दरमियान हिंदुस्तानी किसानों की खेत हैं जिसके अंदर वो जाते हैं और रोज़ाना खेती करते हैं और लौट के आते हैं। उसमें जो मिस्क्रिएंट्स हैं वो इन्हीं फसलों की आड़ लेकर के बिल्कुल फेंस के आसपास कहीं छुपे होते हैं और अगर उन्होंने ये देखा कि BSF का जवान उनसे थोड़ी दूर चला गया है पेट्रोल करते हुए तो वो उसका फ़ायदा उठा करके इन कंसाइनमेंट्स को क्रॉस करा लेते हैं।
हालांकि सरहद के किनारे अटारी के पास के गांव राजटाल के सरपंच बलकार सिंह कहते हैं कि सभी किसान तस्करों से मिले हुए नहीं हैं, वो कहते हैं कि ऐसे किसानों की संख्या 100 में से सिर्फ एक ही हो सकती है।
जी जैसे देखो खबरें के मुताबिक किसी ना किसी जिले या किसी गांव में कोई छोटा किसान या बड़ा कैसे बड़ा भी होता है पर कम से कम छोटा जिसका वो पीछे जो स्मगलर उसको लालच दे देते होंगे या करते होंगे बोलते किसी पट्ठे से ले आंदा या रात को उठा लेंदा या कोई मोटर पकड़ा गया वो फिर जो पीछे को लालच देता है कोई एक अद्धा किसान ही होता है 100 में और हर एक किसान ही करता है किसी भी गाँव का।
वहीं अमृतसर के वरिष्ठ पत्रकार शम्मी सरीन कहते हैं कि जब तक नशे के तस्करों की पीठ पर राजनेताओं का हाथ रहेगा तब तक इसे रोक पाना मुश्किल होगा।
जब तक स्मगलरों को पीठ पर राजनेताओं का हाथ रहेगा और उनका पुलिस के साथ गठजोड़ रहेगा ये समस्या बनी रहेगी। और ये जो है ये बड़े लेवल पर है। जो लोग आप समझते हैं पकड़े जाते हैं वो तो महज उनके उनके एक खिलौने होते हैं। वो
सीमा सुरक्षा बल और पुलिस का कहना है कि नशे की तस्करी की बड़ी वजह है नदी और बरसाती नाले। वो कहते हैं कि खास तौर पर बरसात के मौसम में तस्करों पर शिकंजा कसना मुश्किल हो जाता है। अब रावी नदी कहीं पाकिस्तान में है तो कहीं पर भारत में। नदी के प्रवाह के रास्ते में कटीले तारों की बाड़ लगाना भी मुश्किल काम है और शायद इसी का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ सरहद के उस पार से भारत लाए जा रहे हैं। सलमान रावी, BBC, अमृतसर।
आपको सलमान रावी की ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का और समीर आ चुके हैं समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो। समीर क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जी सुशीला, आज अखबारों में दो खबरों की चर्चा प्रमुखता से है। एक तो सरकार और नगा उग्रवादियों के बीच जो ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ और दूसरी खबर कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिन के लिए जो स्पीकर ने निलंबित किया है। ये दोनों खबरें लगभग सभी अखबारों की सुर्खियों में हैं। लगभग सब अखबारों ने अपनी लीड खबर इसी को बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है स्पीकर सस्पेंड्स 25 अनरूली कांग्रेस MPs फॉर 5 डेज। जनसत्ता की हेडिंग है सब्र टूटा 25 सांसदों को दिखाया बाहर का रास्ता संसद में गहराया गतिरोध 9 विपक्षी दलों ने किया सदन के बहिष्कार का फैसला। तो और वहीं अमर उजाला की भी लीड खबर यही है। इसके अलावा नवभारत टाइम्स लिखता है कि अभी और लंबा चलेगा टकराव। अखबार के मुताबिक कांग्रेस सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एक ओर कांग्रेस राज्यसभा में अपना रुख और कड़ा कर सकती है वहीं कांग्रेस के समर्थन में और विपक्षी दलों के जाने से हालात बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर एक और खबर की चर्चा है कि लैंड बिल पर BJP का यू टर्न। ये हेडिंग है नवभारत टाइम्स की लेकिन दूसरे अखबारों में भी ये खबर प्रमुखता से छपी है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि भाजपा ने UPA शासनकाल के भूमि कानून के अहम प्रावधानों को वापस लाने पर रजामंदी जताई है और अखबार सूत्रों के हवाले से लिखता है कि अपने पुराने रुख से पीछे हटते हुए मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए किए गए विवादास्पद संशोधनों को हटा देगी। तो और अगर बात करें हम दैनिक भास्कर की तो दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर जो है एक तो JBT घोटाले में चौटाला की सज़ा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सज़ा के खिलाफ जो याचिका दी गई थी वो खारिज कर दी गई है। दूसरे एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है अखबार की कि महिला IAS ने कहा भारत में जन्म ना हो। अखबार लिखता है कि मानवाधिकार आयोग के अफसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली ट्रेनी महिला IAS रिजु बाफना ने फेसबुक के जरिए दर्द साझा किया। कहा देश में कोई महिला जन्म न ले लेकिन जब पोस्ट वायरल हो गई तो रात को नई पोस्ट के जरिए खेद जताया। कहा आवेगवश लिख दिया था ये पोस्ट। उसके अलावा अगर हम द हिंदू की बात करें तो द हिंदू अखबार ने भी भारतीय जनता पार्टी जो लैंड बिल के मामले में यू टर्न लेने की बात कही जा रही है उस खबर को छापा है। दूसरे सुषमा स्टेप्स इन टू हेल्प गीता इन कराची। ये बात उस गीता की है जो कि वहाँ पाकिस्तान में पिछले 15 साल से रह रही हैं और उनको यहाँ उनके परिजनों से मिलाने की बात हो रही है।
जी समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समीर। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंत करने से पहले मुख्य समाचार।
BBC समाचार। भारत सरकार ने नगा अलगाववादी संगठन NSCNIM के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी के 25 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में 8 विपक्षी पार्टियां लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जलवायु परिवर्तन पर एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत अमरीकी पावर स्टेशनों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 15 साल के भीतर एक तिहाई कम करना है। कोसोवो की संसद ने संविधान में संशोधन करके एक विशेष अदालत बनाने की मंजूरी दे दी है, जो कि 1990 के दौरान हुए युद्ध अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करेगी। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्री के साथ। नमस्कार, भारत में फिलहाल इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक राजेश चौहान के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।